इसलिए इन ग्रंथों को भीतर में प्रवेश करने की चेष्टा करो मैं, और भजन करो खूब ठीक से। सुनो सो आवश्यक ये सब कम कर दिया, दिन रात इसी में चित्त को डुबाया जाए। आज बाजार गया था टहलने के लिए, जाते जाते देखा दो चार गायें घूम रही हैं बाजार, पिछले घूम रही हैं खाने के, कहीं एक ग्रास मिल गया। थोड़ी सी भी चूक यदि दुकानदारों की हो गई तो झट मुख मार, यहां कोई हरी चीज देखा ना, मटर की फलियां और सब चीजें हरी, सब्जियां बैंगन आलू, बस छट मुख, और वहां पर दो चार लाठी मारती है मुख में तो भी बिना लिए हुए कुछ बकोटा वो निकलती नहीं, कोई परवाह नहीं करती, नहीं कोई परवाह नहीं। और फिर वहां उसमें तो हट जाएंगी, आंख बंद करके मार खा करके चले, और फिर दो मिनट के बाद में वैसे जानती जैसे हमको कुछ हुआ ही नहीं, कुछ ऐसी होता नहीं। एक ना वो पशु होकर के भी यदि ऐसा कर सकता है, और हम ऐसे भी भागा जो पशु सभी गए भी थे, थोड़ा सा कोई क्लेश कोई कुछ हो गया बस भक्ति का ग्रास हम उसमें नहीं लगा सकते, तो समझो। इसलिए ये सब चीजें जैति जन्य वास्तु या अभी तक के हम लोग रसायन की बातें कहीं, इसको सुन करके और जिस दुर्भाग्य आदमी को इसको पाने का लोभ नहीं हुआ तो वो सचमुच में महात्मा था। इन सब रसायनों में यदि डूब जाए कोई, थोड़ा सा भी कोई थोड़ी सी भी लालसा पैदा हो जाए भक्ति की, तो उसके लिए प्रजत नहीं होता। इसी तरह से दूसरे का भी है, कल हम उसके संबंध में कुछ बदल लाएंगे। यह पहला पार्ट यहां पर हुआ, यहीं पर नारद जी ने भगवान से प्रार्थना, प्रभु भक्ति वृत्ति से किसी को तृप्ति न होने पाए, और दूसरी बात मांगा जहां पर भगवान की इन कथाओं से संबंधित कथाएं होती हैं या कथाएं जो हैं, यदि चित्त थोड़ा सा भी उसमें लग गया, जैसे मान ले कि किसी को हम पैर में घी लगा रहे हैं तो अपने हाथ में लगेगा कि नहीं,
हाथ में लगेगा,
अपना कुछ लाभ होगा कि नहीं होगा ना,
पहले तो अपने
हाथ तो अपने लेकर के ऐसे करते तो सब लगाए तो कुछ कुछ आ गया ना। तो ऐसे ही हरि कथा ऐसी है, ये यदि इन हरि कथाओं से किसी प्रकार चित्त का संयोग हो गया तो प्रभु मैंने कौन कथा ब्रज की कथा, तो उसको भव सागर से पार करके और उसको ब्रज का प्रेम दे दें, और ऐसे प्रेम से कभी किसी को तृप्ति ना हो। और तीसरा ये जहां पर ये सब लीलाएं घटित हुई हैं उन स्थानों पर यदि कोई जा करके और वहां का धूली स्पर्श करे अंगों में लगाए तो उसको कृष्ण प्रेम हो जाए। पैसा लगाएगा कौन, यदि कथा में रुचि है और ये समझेगा जानेगा तो ना कि ऐसे ही लगा लेगा, नहीं लगाएगा। इसलिए इन सब कथाओं को समझ बूझ करके उसके लिए कोई प्रयत्न करेगा, बहुत दुर्लभ वस्तु भी सहज ही उसको प्राप्त हो सकती। जयति जन निवासो देव की जन बाबो यदि वह परिषद स्वदो फेचर भजपुरता नाम पर छबरी बाहर की गई। आप लोग देख सुन करके आएंगे, पहले में कौन कौन से अध्याय हैं, दूसरे में कौन कौन से अध्याय, पहले अध्याय में कौन सी लीला का वर्णन, दूसरी में कौन का एक बार स्मरण कब, तब फिर इसको हम देखें कब समाप्त होता है, तब फिर निर्धारित करके उस दिन पुष्पांजलि इस ग्रंथ के चरण में हम लोग देंगे और ग्रंथ के चरण स्थूल चीज मत समझना, इसके भीतरी भाव को लेने की चेष्टा करना। सुस्मिति लग्न तक हो गया है, ये तो हुआ है ना। कल मैंने एक उदाहरण दिया था, ये प्रेम भक्ति एक ऐसी चीज है जिससे सांसारिक दुख अपने आप दूर हो जाए ने? और मुक्ति अपने आप उपस्थित हो जाती है और भगवान के चरणों में प्रेम प्राप्त हो जाता है। सुतुष्ट पुष्टि खुदपायुभाषम भक्ति परेशानुभव विरक्ति अन्यत्र सुतुष्ट पुष्टि खुदपायुभाषम। इसका क्या तात्पर्य, ये सब श्लोकों को याद करना और उसके अंदर में बातों को समझना। भक्ति परेशानुभव एंड विरक्त, ये तीन चीज है। यदि भक्ति हम करेंगे तो भगवान के चरणों में भक्ति, भक्ति के साथ साथ मतलब साधन भक्ति के साथ साथ में क्या होगा, परेशानुभव पर परेश पर ईश अब पर और उनके जो ऊपर वाले हैं प्रभु
परेश,
इन सब की अनुभूति आता कृष्ण की अनुभूति है। इसके साथ साथ में संसार के वस्तुओं की और उपलब्धि होगी, संसार क्या है इसके प्रति उपलब्धि होगी और भक्ति क्या है इसकी अनुभूति होगी। इसके बिना तो भगवान की उपलब्धि नहीं होती, तो उसकी अनुभूति माने परेश अनुभूति मैंने क्या, सभी कुछ की अनुभूति। अतः तो संबंध ज्ञान होगा, संबंध ज्ञान में भगवान के साथ की अनुभूति होगी, कृष्ण की उपलब्धि होगी। परेशान भव और विरक्ति, संसार के प्राप्ति विरक्ति ये अवसंवेग है। भक्ति ही और भगवान की अनुभूति नहीं हुई और विरक्ति नहीं हुई तो इसका मतलब ये भक्ति नहीं हुई, भक्ति हुई नहीं तो उसका मूल जो है तब ये समझना चाहिए, या तो हमारे अंदर में गलती है या गुरुदेव में गलती है, वैष्णव में गलती है। तो गुरु और वैष्णव में गलती नहीं हो सकती, हमारे चुनाव में कुछ गलती हो सकता है गुरु वैष्णव में, और सचमुच में यदि वो गुरु वैष्णव हुए तो आप इधर में यदि हम ही ठीक नहीं हुए गुरु वैष्णव ठीक हुए तो दोष हमारा है, अधिकांश दोष हमारा है। क्यों, इस गुरु इत्यादि के व्यवस्था को कृष्ण है, गुरु की व्यवस्था, भक्तों की व्यवस्था, संघ की व्यवस्था करने वाला कौन है, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए
भक्ति लता बीच।
इसलिए ये मत समझो कि हमने गुरु वैष्णव को पा लिया और हमारे चेष्टा से हम पा गए हैं, लाख कोटि जन्मों में भ्रमण करके भी हम भक्ति नहीं पा सकते हैं, ये इसको गारंटी रखो। भगवान के प्रति शरणागति और वैष्णव के प्रति शरणागति होने से वही कृष्ण ही गुरु और वैष्णव और सबकी व्यवस्था करने वाले, तभी भक्ति होती है। इसी का वो तात्पर्य है, माम एक
क्या परेशानुभव
गुरु पहले जो श्लोक गणित भगवान अपने को स्वाम अपने को विद्रुणते
प्रकाश कर देते हैं,
प्रसाद करते कहां किसको, यदि अनकंडीशनल सरेंडर हो गया कोई अपने को भगवान के चरण में यथार्थ रूप में यदि निवेदन कर दिया और भगवान ने कृपा करके उसको कृपा पात्र के रूप में वर्णन कर लिया तब तो वहां पर हो जाए, चाहे वो मूर्ख से मूर्ख जैसा भी हो, यही बस उनकी योग्यता। और ये नहीं हुआ तब तो गदा में बुद्धि योगम जे ना, ये नहीं गया जैसे कि मान उपयान थे, इसलिए वैसा हम लोगों को होने की जरूरत है। हाँ तो क्या बतला रहा है,
भक्ति परेशान हो सकता है,
भक्ति परेशान हो विरक्ति अन्यत्र तृप्ता, एक काल नहीं। भगवान की भक्ति जितने परिमाण में होगी अनुभूति भी होगी, कर्ज से अनुभूति तो हम लोगों को कुछ नहीं हो गई, हो रही है कि नहीं? हम तो कहते हैं कि हमको तो हो, कैसे कैसे अनुभूति, ये तो हम देख रहे हैं। आज से 50 वर्ष पहले कहां संसार में एक कीट था नरक का, कोई भी सम्मान नहीं देता। अब देखो पढ़ा लिखा भी कम ही, कोई बुद्धि नहीं, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेरिट नहीं, गुण नहीं, क्यों देगा? और थोड़ा ही नाम का आश्रय लिया, गुरु जी की इतनी सी सेवा कर दी ना, तो यही कहा गुरु जी हमारा संसार में जो कुछ प्रेम था, स्त्री में और पिता माता में जो हमारी प्रीति थी, वो आप सबको मैंने निकाल दिया है और आपके चरणों में ही सुना, बस गुरु जी के आंखों से आंसू आ गए, आंसू आना मैंने ग्रहण कर, उसका फल है जो विश्व में सर्वत्र लोग आदर करते हैं। अनुभूति है कि नहीं थी? मैं तो लोग खाले खाने के लिए तरसते हैं, तुमने तो देखो तो ये थोड़ा सा नाम का आश्रय किया है, किसी चीज की कोई कमी नहीं होती, हम चाहते हैं कुछ न मांग और अपने आप सब कुछ हो जाता है, भजन के लिए हम देनी चाहे कोई भी चीज की, किंतु ये दुर्भाग्य हमारा है कर नहीं पाते। ये अनुभूति कुछ भी, और भगवान की कृपा की अनुभूति करो, उसमें आदमी अपने जीवन के लिए बात लिए कितना कष्ट करता है तुम लोगों को पता नहीं है, क्योंकि यहां पर सहज रूप में मिल रहा है, ये भगवान के नाम के आश्रय से और गुरु के आश्रय से। और जितनी बढ़ते चले जाओगे ना देखोगे एक एक विलक्षण भाव सब हृदय में आएंगे, हृदय में पति पत्नी रोमांचित पुलकित हो जाएगा भगवान की कृपा को उपलब्ध होकर, किसी से कहने की जरूरत हृदय में इतना आनंद होगा अपने आप संसार के प्रति वैराग्य हो जाएगा। समय नष्ट हो रहा है इन लोगों से बात, संसार में लोग आएगा महाराज जी हमारी लड़की की शादी नहीं हो रही, महाराज जी हमारी लड़की की शादी किया था उसको ससुराल वालों ने निकाल करके खदेड़ दिया, वो मर रही उसको अस्पताल में भर्ती किया, महाराज जी कोई उपाय बतलाइए जे, कोई सिद्धि सिद्धि मंत्र दे दीजिए। कोई आएगा तो कहते महाराज जी हमारा बिजनेस ठीक नहीं चल रहा, बड़ी आपकी महिमा सुन बड़ी, आप केवल कह दीजिए जो तुम्हारा बिजनेस चल जाए, महाराज जी कह दी, अरे भाई भगवान के पिता नहीं नहीं महाराज जी आप कह दीजिए जो व्यवसाय, हम कहेंगे नहीं और वो कहवाएगा, हम कहिए जाओ वहां पर बैठा वो नहीं माने, कभी नहीं आपकी बड़ी बात सीख ली लग जाए, ये समझ तो नष्ट हुआ, वो समझेगा नहीं, नहीं समझेगा हजार तरह समझा, किसी को कहो जैसे यहां पर मठ में आना नहीं आएगा, और कह देने महाराज जी बड़े सिद्ध हैं, तो यदि ऐसा हाथ कर दिया तो तुम्हारा काम सिद्ध, देखो जो हजार लोग आ गए, ऐसा मतलब नहीं तुम लोग सब लोग ऐसे आदमी को बुला रहे हो, तो फिर भजन तुम्हारा तुम्हारा हम लोग, इसलिए व्यक्ति व्यक्ति ये अपने आप आएगी भक्ति होगा तो, और जिनको व्यक्ति नहीं हो रही है समझो जो वो भजन का साधन नहीं कर रहा है और भगवान की अनुभूति भी नहीं है, और वो संसार के चक्र में काम क्रोध दास हो या ताक लाठी खाए भ्रमित जदि चंद्रता ताक लाठी खाए, लाठी मैंने क्या लाठी नहीं
लाठी
ये लाठी माया मारेसी पर, और बड़ा आनंद में मग्न है, आ हा विषयों का प्राप्ति ही मात्र लाठी है उनके सिर पर, ये समझो। जैसे एक ग्रास खाने के साथ साथ में खून वृत्ति, पेट का भरना, तुष्टि और अन्यत्र पुष्टि, खून की पुष्टि
तुष्टि अनुपाय अनुभाषण,
एक एक ग्रास अनुभाषण मैंने प्रति ग्रास के साथ साथ सुतुष्टि पुष्टि पुष्टि भी होगी, पुष्टि भी होगी और खाने की स्प्रिया, और यदि नहीं हो रहा है अभी हम भजन कर रहे हैं अनुभूति कुछ नहीं हो रही है और समझ में आ नहीं रहा और विरक्ति नहीं हो रहा, समझो जैसे हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे, कुछ गड़बड़ है। इसलिए इन सब चीजों को समझ बूझ करके भगवान का भजन अच्छी तरह से किया जाए, तब तो ये होगा ये सब चीज। उसके लिए चेष्टा, भक्ति वृत्ति के लिए चेष्टा, स्थूल वस्तुओं के लिए नहीं। इसी को उपमा देकर के कह रहे हैं, जैसे कल हमने बताया पाक करने के लिए आग लाए, आग जला दी चूल्हे में, और प्रदीप की कोई जरूरत नहीं, चावल बन रहा है या रोटी हो रही है, उसके प्रकाश से ही सब कुछ इधर उधर सब दिखाई पड़ रहा है। और खूब ठंडक थी, अब उसके यहां रजाई इत्यादि की कोई जरूरत नहीं, उस आग से ही शरीर का वो जो था शीत वो दूर हो गया। पहला काम हुआ
अग्नि प्रज्वलित कर,
अग्नि से प्रकाश आ गया, और उससे दूसरा हुआ शीत दूर हो गया, और तीसरा क्या हुआ
रसोई बनाना,
रसोई बना करके खा लिया। ये तीन काम अपने आप उसी से हो गया। इसमें प्रेमा भक्ति के द्वारा अपने आप ज्ञान हो जाएगा, ये प्रकाश तत्व ज्ञान, कितने प्रकार के तत्व ज्ञान है अपने आप हो जाएंगे भक्ति के करने मात्र से। बतला ना,
जैसे
हरि नाम के द्वारा जितने साध्य और साधन है सभी कुछ मिल गए,
सकल हरिनाम संकीर्तन,
सकले हरिनाम संकीर्तन मिल गए। तो बतलाओ तो हम लोग जितना और दूसरे उपायों के द्वारा हम कुछ जानने की चेष्टा करते हैं, हरिनाम के बल पर, हरि कथाओं के बल पर उनको कुछ प्रयास करते हैं, तो तथा हमारा विश्वास ही कहां। इसलिए इसको पाप को पक्के रखो, यदि तुम हरिनाम करते हो, हरिनाम तो करेंगे, कभी एक माला, कभी दो माला, कभी पांच माला, तुम्हें मन उड़ंत में उसका फल कैसे छठ जाए। हरि कथा सुनेंगे एकदम किस प्रकार से सुन करके उसको याद रखेंगे, तब तो हरि कथा सुनना है, वैसे तो सुनेंगे नहीं तो फल कैसे हो जाएंगे। इसलिए तीनों चीजें हो जाएंगी भगवत प्रेमा भक्ति के द्वारा, पाप भी संसार का दूर हो जाएगा, जड़ता, ये जड़ता, जड़ता माने ये सब चीजें, और मुक्ति इत्यादि सब अनायास ही तुच्छ हो जाएंगे, और कृष्ण का प्रेम भी उनका फिर आनंदमय जीवन हो जाएगा। यहां पर ब्रजभूमि स्थित परम अद्भुत सौंदर्य माधुर्य वैधर्म इत्यादि प्रकृति के द्वारा परमांत सीमा प्राप्त महिमा विशेष का वर्णन सुस्मित सुई मुखे न ब्रिजन माने बहुत से बात लाए,
पाप दुख कष्ट
साधारण लोगों का ये कष्ट ये दूर, और भक्तों के लिए भक्तों के लिए ब्रजवासियों के लिए विरह दूर, और इसके ये बात मैं यहां पर बतला रहे हैं सुस्मित सुई मुखे न, इस मुख के द्वारा अखिल सौंदर्य, अखिल माधुरी और वैदग्ध मैंने क्या
रसिक चतुर्थ
मैंने रसिकता, यह रसिकता प्रकट करके परमंत सीमा प्राप्त ब्रज के इस रूप को मात्र किशोर कृष्ण के इस रूप की महिमा वर्णन कर सुस्वतसी मुखे न ब्रजपुर बवितानंद वर्धयन काम दे। अब ऐसा लेंगे ईसा भाष्य पूर्वक ब्रजपुर बनिता, माथुर बनिता और द्वारकापुर ब्रजपुर बनिता, ब्रजपुर एक शब्द यदि कर दिया जाए, पूर माने पूर को विशेष रख करके ब्रजपुर को ब्रज को रख दिया विशेषण, और विशेष हो गया पूर, तो ब्रजपुर माने एक हुआ, ब्रजपुर माने ब्रजमंडल, नंदगांव बरसाना इत्यादि राधा कुंड ये सब ब्रजपुर, पूर माने गाढ़ा भाव। ब्रज का सबसे गाढ़ा भाव कहां पर है? नंदगांव, वृंदावन, उससे भी अधिक गोवर्धन, गोवर्धन से भी अधिक ये ब्रज। यहां पर समस्त गाढ़ों से गाढ़ो, रहस्य से रहस्य में लीलाएं। अथवा ब्रज पूर्व, ब्रज एक वृंदावन ब्रज और पूर्व माने दो, मथुरापुर और द्वारका, यहां की तीनों की वनिताएं जो किशोरियां हैं उनके काम के देव को काम लक्षण माने प्रेम लक्षण में श्री कृष्ण स्वयं ही तद्रूप विराजमान। ये कामदेव है किंतु अपने को ही वर्धन कर रहे हैं। जयति वे कामदेव जो गोपियों के हृदय में ब्रजपुर बनिता नाम तीनों जगह की बनिताओं में कामदेव को वृद्धि कर रहे हैं। ये दो हुए जो कर रहे हैं ब्रजेंद्र नंदन वो वर्धन कर रहे हैं उनके हृदय में, किंतु किसको वर्धन कर रहे हैं? उनके हृदय में कामदेव को, कामदेव माने अपने वर्धन कर रहे हैं। कैसे वर्धन कर रहे हैं? अपने प्रति प्रेम ही वो कृष्ण भी वहां पर उनके हृदय में प्रेम की मूर्ति से, इसलिए उसी को वो वर्धन कर रहे हैं। अर्थात अपने के द्वारा, मुख के द्वारा उनके हृदय में अपने को ही आनंदित कर रहे हैं। गोपियों का आनंद माने क्या? कृष्ण के लिए आनंद। तो उसके देखने से गोपियां प्रसन्न होने पर कृष्ण को ही आनंद होता है। इसलिए ऐसे जो कामदेव हैं वो जयदूत तो हो। वनिता शब्द का अर्थ ही होता है वन संबंधी, वन संबंधी माने ब्रज वन संबंधी जो प्रेम है वो। तो कृष्ण के प्रति परम अनुरागवती जो गोपियां हैं वहीं पर गीता बोल होता है। इसलिए मथुरा द्वारका और ब्रज, ब्रज मथुरा द्वारका विलासिनी स्त्रियों का यहां पर निर्देश किया गया। उनके हृदय में जो स्थित कामदेव माने कृष्ण है वो पर यहां पर ब्रज सुंदरियों का उनसे भी श्रेष्ठ श्रेष्ठत्व ज्ञापन करने के लिए ब्रजपुर बनिता, यहां पर ब्रजपुर की बनिता अर्थात श्रीमती इत्यादि गोपियां इत्यादि जितनी इन्हीं के लिए विशेष, इन्हीं के लिए विशेष रूप में यहां पर प्रयोग होगा। उस काम के अनुष्ठात्री देवता का यहां पर उसको वर्णन कर कल हम लोग
Thank you. Thank you.
है तू दूसरा अर्थ बताया ब्रज तू ब्रज एंड मथुरा
भजंज पुरंज
एंड द्वारा ये तीनों जगह की कनिका बंता शब्द का अर्थ बताया अनुराग होती विशेष करके वन शब्द से बनीता जो कृष्ण की सत्ता से प्रतिविधान करती है वो ब्रज स्त्रियां इसलिए बनता ब्रज पूर्व बनता नाम बर्फने काम कल ये बताया जो कामदेव का तात्पर्य है काम के जो देव अर्थात प्रेमता के प्रेम के जो देव अपने ही बतला रहे हैं बर्भयम गोकुल के हृदय के जो आराध्य देव हैं या उनके प्रेम के जो देवता हैं बर्थन उनको पढ़ाते हैं कौन कृष्ण ही पढ़ाते हैं और बढ़ने वाले भी वही हैं बढ़ाने वाले भी वही हैं दोनों इसलिए यहां पर कृष्ण ही जय जयजुक्त हूं ये समझना चाहिए हम लोगों को कि यह जो प्रेम है इस लोक का यह कोई चीज नहीं ये लोक बड़े धाम की संपत्ति है और वह चिन्मय संपत्ति है यह केवल इसको कृष्ण या कृष्ण के अत्यंत अनुरागी जन ही इसको दे सकते हैं दूसरे नहीं दे सकते कृष्ण के एकांतिक अनुरागी ब्रज के रसिक वैष्णव यदि कोई हो ऐसे अथवा गुरु कृष्ण प्रसाद देता भक्ति दत्तावीज के लिए ये और भी दुर्लभ तो इसलिए ये कृष्ण ही कृपा करके जीवों में इस वृत्ति को देते हैं ये सबसे दुर्लभ चीज है इसलिए दुर्लभ लोगों में ही इस चीज को देंगे सबको जहां तहां जैसे तैसे इसको नहीं लुटाएंगे ऐसा कोई दुर्लभ व्यक्ति हो सौभाग्य से कोटि कोटि लोगों में से किसी एक व्यक्ति को यदि ऐसे प्रेम का प्रति लोग हो उसको भी जांच आई करके काट छांट करके तक देते जैसा धर्म इसलिए ऐसा प्रेमी व्यक्ति कभी कभी किसी युग में दिखाई पड़ता है महाप्रभु के समय में कुछ लोग आए थे उनको देखा जाए इसके बाद में खुद बिरले यदा तदा कभी कभी ऐसे व्यक्तियों को देखा जाएगा सभी समय में इसलिए सुंदरियों की श्रेष्ठता को सूचना के लिए ब्रजपुर बनिता नाम बढ़ने में काम के पहले बताया क्रमशः जन साधारण के लिए हृदय में निवास करने वाले उनके आराध्य हैं ऐसे जो कृष्ण हैं ये जय जयते फिर बतलाया देवों की जन्मवाद इसके बाद में जदुगण परिषद फिर अधर्म का विनाश करके धर्म की प्रतिष्ठा करने वाले स्थिर चर विधि नाम स्थिर और चर जड़ और चेतन समस्त जीवों के चेतनात्मक चलने और स्थाव और जंगम समस्त प्राणियों के समस्त प्रकारों को दुख को दूर करने वाले और दूसरा इसका क्या ब्रज ब्रजी ब्रज के जो स्थिर और चल जितने भी प्राणी हैं उनको दुख अर्थात गिरह दुख को दूर करने वाले और अंत में बताया सुस्मुत से मुखे ब्रजपुर बलिदान वर्णयन काम इसलिए सबसे अधिक ब्रज की बलिताओं की ही यहाँ पर श्रेष्ठता दिखलाई जाए। यहाँ पर बताए हैं ब्रजपुर वनिता अर्थात ब्रजपुर के वनिताओं के हृदय स्तर जो काम है काम का भाव प्रेम काने से भी वो नहीं होगा। वह प्रेम जो काम संबंधी है अपराध ब्रज का जो रुद्रों के हृदय में जो काम है उस काम के अधिष्ठात्री देवता से ये अभिन्न है। अधिष्ठात्री देवता प्रेम के अधिष्ठात्री देवता कौन है? ब्रजनंदन श्याम सुंदर किशोर श्याम सुंदर है। तो ये कामदेव कृष्ण एक है उन्हीं को बढ़ाने वाले हैं। कौन बढ़ाता है? कृष्ण। और बढ़ाते हैं किसको? अपने। किंतु कृष्ण से यहां पर कामदेव का कुछ अधिक वैशिष्ट्य है। गोपिकाओं की जो वर्धनशील जो कामदेव हैं उनको और भी बढ़ाते हैं। वर्धनशील तो है नित्य नवनारायण और उसको भी ये बढ़ाने वाले हैं। अतः श्री कृष्ण स्तुति में तादृश भारत अप्राकृतक अपराधिक भाव दिखलाने के लिए अपराधिक है कोई जगतिक नहीं है इस चीज को दिखलाने के लिए परमानंद के परिकाश पराकाष्ठा रूप में इसको दिखलाया है। अर्थात वह जो प्रेम है वह स्वयं कृष्ण ही है। वह प्रेम दूसरा क्योंकि रसो वैश्य दोनों एक थी। वृंदावन समस्त लीलाओं का घना भाव है वृंदावन। वृंदावन मम पावनम तमेव वृंदावन मम जीवनम तमेव वृंदावन मम
भूषणम तमेव
भूषणम तमेव वृंदावन मम सत् जस
तमेव।
इसलिए वृंदावन समस्त लीला विलासों का आकर होने के कारण इसको ब्रजपुर कहा गया है। इसलिए वे कामदेव निज वनिता गोपियों के अर्थात अपने काय जो जो गोपियां उनकी काय जी राधा जी की काय भी मैंने कृष्ण की ही काय भी मैं यहां पर काम का तात्पर्य हास्य युक्त शिवमुखे न सुस्मित श्री मुखे में कैसे सुस्मित हास्य युक्त मुख में वेणी वादन करते करते स्वयं तद्रूप विराजमान है। यहां पर काम का शब्द का एक अर्थ सनातन गोस्वामी देते हैं कामना स्व अभिलाषान दिव्यति अतत प्रकाशयति। जो समस्त जीवों के निखिल कामनाओं को उनके अभिलाषाओं को प्रकाशयति प्रकाश अथवा स्व अभिलाषा अपने कामनाओं को जो प्रकाश करते और भक्तों के निकट भक्त लोग अपनी अपनी अभिलाषाओं को प्रकाश कृष्ण के यहां करते हैं और कृष्ण उसको पूर्ण करते हैं। किंतु एक स्थल वृंदावन ऐसा है जहां पर कि कृष्ण ही अपनी दिव्य अभिलाषाओं को प्रकाश करते हैं और गोपियां उनको परिपूर्ण करती हैं। उल्टा यहां पर अर्थ हो तो यहां पर यही है कामदेव कामान काम काम देवान कामान स्व अभिलाषान कृष्ण की जितनी प्रकार की अभिलाषाएं हैं उसको दिव्यति प्रकाया प्रकाशयति उसको प्रकाश करते हैं और गोपियां उसको परिपूर्ण करते हैं। अथवा कामीन काम के द्वारा स्वभिलाषीन दिव्यति क्रीड़ती जस कामदेव जो कामनाओं को अर्थात अपनी मनोभिलाषाओं को के लिए दिव्यति क्रीड़ती स्वयं क्रीड़ा करता है अपनी मनोभिलाषाओं के लिए कैसे कोरा पंचाध्याय के प्रथम श्लोक में यह बतलाया गया। पहला श्लोक क्या है? पहला श्लोक
भगवान की तारात्रि सर्वत्र,
भगवान की तारात्रि सर्वत्रिका,
विचरंतु रमश्चक्रे, विचरंतु रमश्चक्रे, विचरंतु
रमंतु मनश्चक्रे सर्वो माया। यहाँ पर रंतु मनश्चक्रे, रमण की इच्छा किसने की? कृष्ण ने स्वयं की, इनके अंदर में अभिलाषा हुई। तो यह राज किसकी अभिलाषा से हुआ? कृष्ण की अभिलाषा से। रंतु मनश्चक्र मैंने किया, और तब उन्होंने बैंड बजाई, सब गोपियां आ गई। जैसे आराध्य देव को बुलाया जाता है, तो कृष्ण ने आराधना करके उनको बुलाया। किस लिए बुलाया? अपनी कामनाओं के लिए बुलाया। तो गोपियां उनके आराध्य देव जैसी आ गई, उन्होंने बुलाया तो आ गई। आने के बाद में कृष्ण स्वयं उनको लेकर के नित्य इत्यादि में बैठ गए। इसलिए यहां पर कहा है कि प्रति मन तुरति स्वाभिलाषेन, अपनी अभिलाषा से ही, उनके अविर्भाव का हेतु भी यही है। आनंद का आस्वादन करने के लिए, प्रेम का आस्वादन करने के लिए, ब्रज रस का आस्वादन करने के लिए कृष्ण स्वयं नंद बाबा के घर में आविर्भूत होते हैं। कामदेव, वह कामदेव जो कामेन अभिलाषेन स्वाभिलाषेन दिव्यति, देव मने दिव्यति, क्रीडति स कामदेव। अर्थात जो तदीय सुख उत्पन्न करने वाला जाति अभिलाषाओं को भक्त के हृदय में प्रकाश करता है, अथवा जो निजानंद में विभोर होकर के शिक्षा में क्रीड़ा किया करते हैं, वो कामदेव। इसमें काम गायत्री में भी ठीक ऐसे ही है। सात एक पद, यदि कोई प्रतिपूर्वक इन सब का ध्यान और स्मरण नहीं करेगा, किसी भी काल में वैधि भक्ति भी नहीं होगी। राधा लीला की तो बात ही अलग है। यदि उनको अधिष्ठात्री देवता नहीं मान करके प्रीति के साथ में हरिनाम, प्रीति के साथ में ये मंत्र सब नहीं करेंगे, चित्त इधर उधर करके करेंगे, आवश्य प्रमाण से करेंगे, तो क्या स्थिर हो? इसलिए चित्त को स्थिर कर और कुछ कहीं कुछ कोई भी आशा न करके इन मंत्रों से ही आशा कर। गुरु जी कृपा करके इस चीज को दिए हैं चिंता मनुष्य भी अधिक इस मणि को, किंतु इसका प्रयोग ही हम नहीं जानते, यही ऊपर गड़बड़ है, इसलिए इसका प्रयोग नहीं करता। कहने को ये सब कुछ देने वाले, ये सब एक एक से मिलता, किंतु दुर्भाग्य हम लोगों का है। वैष्णव लोग क्या करते हैं? उन मंत्रों के प्रति, गुरु के प्रति, वैष्णव के प्रति, शास्त्रों के प्रति श्रद्धा को स्थापित कर लेते हैं। जैसे और कहीं से कुछ नहीं करना, कहीं कुछ भटकने की जरूरत नहीं। ये माल तो गड़ा हुआ है तुम्हारे घर में ही, मैं जानता हूं ये कहां है, तुमको पता नहीं है, किंतु है तुम्हारे घर में, कहीं जाने की भटकने की जरूरत नहीं है। तुरंत की तरफ में थोड़ा सा खुद तो देखो, अब तक वो जानता नहीं था ये कहां है, किंतु है। ये गुरु वैष्णव लोग इसको पतला करके ठीक कर देते हैं, इसलिए कहीं भी भटकने की कोई जरूरत नहीं। यदि पूर्ण विश्वास करके ऐसा होता तो साथ ही साथ में जरूर काम कर जाते हैं। गोपियों के काम को वर्णन किया करते हैं। गोपियों का काम क्या है? गोपियों के काम देव को वर्णन करते हैं। यहां पर तो कहा जा रहा है गोपियों के, किंतु है कौन?
अपने आप
में गोपियों के वो काम के देवता है, बढ़ाए उनको बढ़ाए। जैसे नाम साधन और साध्य है, कृष्ण भी ऐसे ही है, दोनों विषय और आश्रय दोनों खुद ही बन गए। जैसे गिरिराज गोवर्धन पर विषय और आश्रय, एक आश्रय बन गए कृष्ण और दूसरे बन गए विषय, और बल्कि विषय से वहां जो विषय बने हुए कृष्ण हैं उनकी अपेक्षा ये आश्रय श्रेष्ठ है। जो विकार ये जो बने हुए हैं विराट श्रेष्ठ है ना, जो यहाँ पर उपदेश देकर के उनसे पूजा करा रहे हैं, ये पूजा कराने वाला जो है वो श्रेष्ठ है। कौन श्रेष्ठ है? विराट से यही श्रेष्ठ। तभी उनको विषय बना करके अपने को आश्रय बना करके सब पूजा कर रहे हैं, अपनी भी पूजा कर रहे हैं। और इसके द्वारा क्या करते हैं? संसार की प्राकृतिक समस्त प्रकार के कामों को जय कर देते हैं। जय की कामदेव इत्यादि जो कहा गया, कृष्ण ने ये जो राज की लीला की थी, हमारे जितने भी टीकाकार हैं सब ने एक स्वर से, सिद्धार्थ स्वामी से लेकर सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर या दूसरे दूसरे संप्रदाय के जो आचार्य, सब ने उन्होंने यही लिखा है कि कामदेव के ऊपर में कृष्ण का यह विजय है। यदि लोग श्रद्धा पूर्वक इसका श्रवण करे कोई खूब श्रद्धा पूर्वक, तो उसके हृदय में रहने वाले जितने प्रकार की कामनाएं हैं और काम का साक्षात जुबा वह निश्चित रूप में दूर हो जाएगा। कृष्ण ने अघासुर बकासुर ये सबको मारा, इसके बाद में ब्रह्मा जी का नाम वर्णन किया, इंद्र का नाम वर्णन किया और ऊपर जम महाकालपुरम में गए, वरुण देव को
ब्रह्मा,
शंकर जी को बाणासुर युद्ध में सब देवताओं को एक एक करके हराया, सबका राज्य बस एक ही केवल बाकी थे जो सब पर विजय करने वाले काम, जो ब्रह्मा को नचा दिया, शंकर जैसे व्यक्ति को नचा दिया, नारद को नचा दिया, इंद्र को तो चुटकी बजाते ही कितनी बार उनको नचा दिया, और कुबेर और ये सब की तो कोई बात ही नहीं, सब लोग को नाक से चना चबा दिया। ये काम साधारण नहीं है, बड़े बड़े धैर्य वालों को भी न जाने कैसा बना देता है, निर्लज्ज विधाया बना देता है। ऐसे काम को दिखलाया जिसमें करोड़ों करोड़ों या अगणित गोपियां परम सुंदरी अस्त्राओं से भी जमुना का निर्जन किनारा, पूर्णिमा चांद और इसके जितने उपकरण हो सकते हैं सब, इसमें नारद इत्यादि ब्रह्मा इत्यादि तो कोई उपकरण न होने से ऐसे ही हार गए, और ये सबको लौटा दिया कि तुम जाओ घर में अपने पत्नियों की सेवा करो और काम को भी विजय कर दिया, और इसके सुनने वालों को बतलाया कि तुम्हारे सब प्रकार के काम तात्पर्य ये कि जो काम सर्वार्थ घातक है, समस्त लोगों के लिए घातक है के रूप में प्रसिद्ध है, वही काम गोपियों के संबंध में संसार को ध्वंस करने, संसार की आसक्ति को ध्वंस करने वाला है, पंडाथों की जो जड़ है, और वही गोपियों से जब संबंधित हो जाता है तो वो परम कल्याणकारी बन जाता है। अतः कृष्ण चरणारविंद को वशीभूत करने के लिए इस काम से बढ़कर के और कुछ नहीं है। मुक्ति मुक्ति और भक्ति का भी फल यह काम, इसलिए हमारे संप्रदाय से या हमारे संप्रदाय से बहुत पहले ही श्रुति, उपनिषद, मुनि, उनके मंत्र, सब लोगों ने इसी भाव से कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए उपासना की, जिसको चैतन्य महाप्रभु जी ने कलयुग में परम सर सरल और सुगम कर दिया है। अनाधिकारियों को भी चैतन्य महाप्रभु जी ने यह प्रेम दिया कि दृष्टि
एमन दयालु प्रभु नाहीति हुआ नहीं कृष्ण प्रेम जन्माजर
दूरदर्शन, गुरु के दर्शन से ही इस प्रेम को दे देते, अनायास नहीं, यहां तक कि पशुओं पक्षियों को भी इन्होंने दान कर दिया। जगाई मधाई तब भी प्रेम में एकदम नाचने लग गया। अब वो प्रेम गोपी प्रेम था या दूसरा साधारण प्रेम तो होगा ही, यह प्रेम प्रतिक्षण नूतन और नूतन से नवतर चरम सीमा को प्राप्त हो रहा था। कृष्ण ही गोपियों के हृदय में कामदेव स्वरूप है, गोपियों के हृदय में जो गोपियों का जो प्रेम था वो क्या है, कामदेव। अर्थात वही कृष्ण ही का स्वरूप है, रसो वैशा के रूप में वहां पर कामदेव बने। जिस प्रकार से अन्य लोगों के हृदय में साधारण जगत का काम सब कुछ कराता है, ध्वंस की तरफ में ले जाता है, वहां पर कृष्ण स्वयं गोपियों के हृदय में काम बन करके और जगत का कल्याण करता है। इस प्रकार से काम रूपी कृष्ण सदा काम उद्दीपन किया करते हैं, ऐसे कृष्ण यहां पर जागृत तो हों। यहाँ पर और एक अर्थ बतला है, नाना रूप कामों में भगवत विषय जो काम है वह वही परम प्रेम के रूप में बदलता है। यह काम नहीं, नाना रूप कामों में जो भगवत विषय काम है, भगवत विषय काम मैंने अनुकूल्य कृष्ण अनुशीलन, उसमें जो भाव वृत्ति है वही आगे बढ़कर के शुद्ध सत्व के रूप में भाव, और फिर वही भाव गोपियों के संग में यह परम प्रेम के रूप में परिणित होकर के कामदेव के रूप में अभिहित हुई है। यही थी पर विशेषण में तृतीय होने पर यह होगा, ईशत हास्य युक्त श्रीमुख विशिष्ट निज संबद्ध माधुर्य को प्रकटन करके ब्रज बलिता के काम संबंधित काम क्रीड़ा अर्थात विस्तार पूर्वक जय युक्त हो रहे हैं, उनके हृदय में प्रेम का संचार करके वही जय युक्त हो रहे हैं। जिसका थोड़ा सा अंश नौ वृंदावन में द्वारका में दिख जाने पर सभी अपने स्वभाव से विचलित हो गए, थोड़ा सा दिख रहा है एक साथ के नंद किशोर मुखारविंदा जी शोभा द्वारा निज सुख विशेष संपादन चतुर्वर्ग तुच्छ कर जाए जे भक्त कृष्णचंद्र कभी कभी अपने भक्तों को अपना दर्शन देकर के जैसे रूप गोस्वामी ने वर्णन किया, वृंदावने बिहरी तो रीह के निकुंजे मत दीप कैरव अवलोक कपि भ्रमेण संदर्श यस्य जो जो बदन अरविंदम द्वंदम विधेहि मई कृपा। वृंदावन में दोनों पर मत होकर के विचरण कर रहे हैं, आप अनुग्रह करके अपना वह सुंदर दोनों अपने मुखारविंद दर्शन दें, जैसे कि मेरा जीवन छोटा है, मैं आप लोगों से यही कामना करता हूं प्रार्थना करता हूं कि मुझे वो दर्शन दें। यदि एक बार कभी दर्शन हो गया झलक में भी तो ये संसार एकदम सदा के लिए भूल जाएगा, फिर उसमें कभी भी रुचि नहीं हो सकती। अर्थात यह वर्तमान निर्देश है, बढ़ वर्तमान काल की कार्य बढ़ मैंने वृद्धि प्राप्त हो रहे हैं। अभी बिकड़ी अंचती किसी श्लोक में बिकड़ी अंचती दशम स्कंध के राष्ट्र अध्याय में बिकड़ी अंचती इत्यादि वर्तमान क्रिया पर सब समय राष्ट्र में या श्रीमद भागवत में या यहाँ पर जयति के अधिकम अपि यहाँ पर भी जयति देवकी जन्म बाबू इत्यादि यहाँ पर भी जयति। इसलिए श्रीमद भागवत पूर्व काल का कोई चीज नहीं, सब समय वर्तमान का होता है। अभी भी लीला हो रही है, कोई सौभाग्यवान जीव उसका दर्शन कर सकता है। इसलिए पूर्ण स्थान में सर्वदा भगवान प्रकट लीला अपने लीला कर रहे हैं, इसे ऐसा समझ में आता है। और भी लिखा गया है जत्र भगवान सन्निहित तो हरि मथुरा के लिए, यहां पर भगवान सब समय अपनी यहां पर नित्य लीलाएं कर रहे हैं। द्वारका के भी लिए लिखा है और वृंदावन के लिए भी लिखा है, वृंदावन परचर्यति कभी वो जाते नहीं, तो वृंदावन में भी लीला करते हैं, द्वारका में भी लीला करते हैं, मथुरा में भी लीला करते हैं और जीवों के हृदय में भी नित्य वर्तमान रहते हैं। उनकी लीलाएं सभी हो रही हैं। अज्ञात है गौ लीला करे महाप्रभु जी की लीला, किंतु कोई कोई सौभाग्यवान जी उसे देखते हैं, दूर नहीं हमारे हृदय में ही सर्वत्र ही थोड़ी सी माया माया जाल उठाए जब हम आखि देखे विशाल चिन्ह। भक्ति विनोद ठाकुर जी वर्णन कर रहे हैं, मैं नौकरी छोड़ करके आया, नवदीप के गोद्रुम दिन में मैंने एक छोटी सी भजन कुटी बनाई। क्यों बनाई है? गो माता है, बिना गो माता के कृपा के कई काम नहीं चले। ये सब ब्रह्मा जी ने इंद्र जी ने तपस्या करके अपने अपराधों का साधन किया और महाप्रभु की कृपा पाई, इसलिए मैं भी ये क्षमा दान वाले स्थान पर बैठ करके मैं भजन करूंगा। हमारे पाप का सब पाप तो उनका है नहीं, तभी कह रहे हैं ये सब माया दूर हो जाए, तो मैं वहां पर आकर के भजन जी बना। मुझे बड़ी लालसा थी कि महाप्रभु जी का यह स्थान प्रकट हो, उसमें महाप्रभु जी का स्थान जन्म स्थान कहाँ है ये कहीं पता नहीं। जैसे पहले महाप्रभु जी के समय में जब आए तो वृंदावन कहीं नहीं था, चारों तरफ में बंद थे, किंतु यही पर ये वृंदावन है, ये राधा कुंड है, ये श्याम कुंड है, ये कोकिला वन है, ये महावन है, ये सब जंगल महाप्रभु जी ने कृपा करके सबको फिर से प्रकट किया। उसी तरह से मायापुर भी चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान। मैं बहुत व्याकुल हूं अपनी आत्मकथा में, मैं बहुत व्याकुल हो गया कहां है उनका जन्म स्थान। इसके लिए मैं पुराने नवदीप शहर में गया और वहां पर लोग कह रहे थे ये श्रीवास अंगल है, ये जगाई मधाई का घाट, कुछ कुछ बतलाते। मैं गया वहां पर देखने के लिए बड़ी लालसा से, वहां पर कोई ना कोई चिन्ह तो होगा, मैंने कहीं कोई चिन्ह नहीं देखा, मैं बहुत निराश हो गया। एक दिन मैं नवदीप धाम की वंदना कर और एक मकान पर जहां मैं ठहरा था उसके छत पर चढ़ गया और चढ़ करके रात 10 बजे तक देखता रहा जो कहीं कुछ चीज कोई दिखलाई पड़ती है कि, और प्रार्थना हृदय में कर रहा था, हठात देखा उत्तर की तरफ में गंगा से पार एक दिव्य ज्योति दिखाई दी, एक क्षण दिखाई दी, इसके बाद में फिर दिखाई नहीं पड़ा। लोगों से पूछा जो भाई उधर में क्या चीज है, तो किसी ने कहा बल्लाल देवी एक स्थान है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, वहीं पर सुनते हैं कि पुराने लोग कहते हैं कि उधरी में करीब महाप्रभु जी का जन्म हुआ। मैं दूसरे दिन वहां पर पहुंचा और चारों तरफ खोजने लगा अच्छी तरह से, एक एक स्थान को देखा, कुछ भी पता नहीं। फिर लौट, फिर दूसरे दिन छत पर एक दो आदमी साथ देखा दिव्य और देखा जी महाप्रभु मृदंग लेकर और हजारों लोगों के साथ में नृत्य कीर्तन कर रहे हैं। सब लोग ढुलक ढलक करके गिर रहे हैं, आंखों से आंसू की धारा, हरी बोल चलता है। क्षण मात्र देखा और फिर अब तो मैंने कहा जिसे जरूर वही पर होगा। वहीं से मैं देखा था एक नारियल का पेड़, ताड़ का पेड़ देखा। दूसरे दिन ताड़ को ये पेड़ को खोलते खोलते वहां कर गया और देखा जो सचमुच वहां ताड़ का पत्र है। और पुराने लोगों से पूछा तो लोगों ने बताया कि हम सुनते हैं कि यहीं पर चैतन्य महाप्रभु दिया है, ये भगवान ही देखो दिखलाया है। इस विषय में अप्राकृत विषय में मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। ये भक्ति भी अप्राकृत वृत्ति है, अप्राकृत
वस्तु
दासों वैष्णव और अप्राकृत गुण और अप्राकृत भगवान की कृपा के बिना भाई ये भक्ति नहीं आएगी। बस एक ही उपाय है इसके लिए, यदि अंतर से यदि प्रार्थना की जाए तो वो कृपा करके स्फूर्ति करा देंगे, ये भक्ति का उपाय है। और हम चेष्टा करके कर लेंगे तो भाई वो लाख कोटि जन्मों में भी यही काम देवता यहां पर प्राप्त कर देंगे। वो स्वयं ही प्रेम को हृदय में स्फूर्ति कराने वाला। स्फूर्ति तीन प्रकार से होती है, एक तो प्रत्यक्ष कोई स्फूर्ति जागृत अवस्था जैसे भक्ति मनोज ठाकुर को, दूसरा होता है स्वप्न में और तीसरी होती है स्फूर्ति में, आवेश में स्फूर्ति होती है और एक होता है स्वप्न।